गुरु है तेरी शुद्धात्म स्वामी की आचार्य कुंद कुंद स्वामी की आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज हम सभी लोग आचार्य भगवंतों के द्वारा बताई हुई अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं। दृष्टि निर्मल होने और आत्मज्ञान होने पर हमारे भीतर जो बुराइयां हैं वे हमें स्पष्ट नजर आने लगती हैं। जब तक व्यक्ति को सही दृष्टि नहीं मिलती और सच्ची समझ उत्पन्न नहीं होती तब तक अपनी भूलें भूलें नहीं मालूम पड़ती, और जैसे ही दृष्टि समीचीन हो जाती है और अपने आत्म कल्याण की समझ हमारे भीतर आ जाती है तब फिर हम समझने लगते हैं कि किस में हमारा भला है किस में हमारा बुरा है। ये जो भले बुरे की समझ है वो धीरे धीरे हमारे आचरण को परिवर्तित करती है, करना चाहिए। बस जीवन अपना इसमें बीत गया कि हमें भले बुरे की समझ तो हो जाती है पर हम जो भला है अपने जीवन के लिए अच्छा है उसे शुरू नहीं कर पाते और जो बुरा है उसे छोड़ नहीं पाते। इसके लिए भी आचार्य भगवंतों ने एक उपाय दिया है कि हम इस बात का और विचार करें, सुबह शाम बैठें शांति के साथ और अभ्यास करें इस चीज का। जैसे कभी अपन थ्योरी पढ़ लेते हैं फिर उसका प्रैक्टिकल करते हैं, तो ठीक ऐसी ही प्रक्रिया है। विचारों को हम जानकारी हासिल करने के लिए तो प्राप्त करें ही विचार, लेकिन उनसे हमारे आचरण में भी परिवर्तन आए इसकी प्रक्रिया, इसका अभ्यास, इसकी साधना करनी चाहिए। उसके लिए रखा हुआ है सामायिक, उस पर अपन दो तीन दिन से विचार कर रहे हैं। सामायिक के मायने क्या है ये अपन ने समझ लिया है, सामायिक में हम करते क्या है, सामायिक करनी कैसे चाहिए और हमारे सामायिक के समय परिणाम क्या होना चाहिए। प्रक्रिया तो हमने समझ ली कि हम स्थिर चित्त हों, स्थिर हमारा शरीर हो, हमारी वाणी भी स्थिर हो जाए, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कि हम अपने मन वचन काय के परिस्पंदन को, मन वचन काय की विकलता को रोकने की प्रक्रिया करते हैं, उसे शांत करने की प्रक्रिया करते हैं, वो सामायिक कहलाती है। और मन को कैसे रोकें, तो मन को हम विचारों में लगा देते हैं, भले विचारों में हम मन को लगा देते हैं। शरीर और वाणी को तो स्थिर कर दिया लेकिन मन में हम निरंतर उठने वाले विचारों को देखते हैं और अशुभ विचारों को हटाते हैं, शुभ विचारों में लगा देते हैं। तो आचार्य भगवंतों ने इसी का नाम सामायिक कहा कि हम बैठ जाएं और अपने भीतर, बाहर से तो हमने पाप क्रियाएं बंद कर दी हैं अब भीतर भी पापों की तरफ जाते हुए मन को रोकें और उसको क्या करें, पंच परमेष्ठी के स्मरण में लगा दें, इसी का नाम सामायिक। लेकिन इस तरह की प्रक्रिया करने से उपलब्धि क्या होगी, प्रक्रिया तो अपन कर लें और बहुत सारी प्रक्रियाएं अपन करते हैं लेकिन उनसे हमें क्या उपलब्ध होना चाहिए इस पर हमारी दृष्टि पहले जरूरी है कि हम निरंतर इस प्रक्रिया को करें, अपने मन वचन काय की विकलता को रोकें, अपने मन को शुभ में लगाएं अशुभ से बचाएं। इस प्रक्रिया से हमारे भीतर समता आएगी, हमारे भीतर हर्ष विषाद के बीच हम अभी विहल हो जाते हैं फिर हमारी वो विहलता, हमारी वो आकुलता कम हो जाएगी। यानी हम देखें तो ये जो प्रक्रिया है वो हमारी आदत को बदलने वाली प्रक्रिया है। हमारी अभी आदत है हर्ष विषाद करने की, सुख दुख में हर्ष विषाद कर लेते हैं या कि इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके राग द्वेष कर लेते हैं,
ये सारी प्रक्रियाएं हमारे जीवन में चलती रहती हैं। हम जल्दी से क्रोध में गिर जाते हैं, जल्दी से अहंकार करने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं, या कि हमारे अंदर छल कपट करने का भाव आ जाता है, लालच। लालच तो हमारे मन में 24 घंटे बनी रहती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की क्यों ना हो। ये हमारी कषायें हमारे आदत में इतनी शामिल हो गई कि कषायों से रहित भी कोई जीवन हो सकता है इसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते। 24 घंटे कोई ना कोई कषाय हमारे जीवन में चलती है। हम धर्म ध्यान करते हैं तब सिर्फ हमारी कषायें मंद होती हैं, पर कषायें फिर भी बनी रहती हैं। हम क्या करें जिससे कि हमारी जो कषायों की तीव्रता है वो कम हो, उसी के लिए ये सामायिक की प्रक्रिया। हमारा मोह घटाने के लिए, हमारा राग द्वेष घटाने के लिए ये प्रक्रिया, हमारी आदत को परिवर्तित करने के लिए। तो पहली चीज सामायिक, रोज करते करते हम देखें कि हमारी आदत बदली है कि नहीं बदली। हम क्रोध से या कि घृणा से प्रेम की तरफ बढ़े हैं या कि नहीं बढ़े। हम अहंकार और ईर्ष्या से विनय की तरफ बढ़े हैं या कि नहीं बढ़े। हम छल कपट की अपेक्षा और सरलता की तरफ बढ़े हैं कि नहीं बढ़े। हम लोभ की आदत को छोड़ करके थोड़ा संतोष पूर्वक जीवन जीने की प्रक्रिया की तरफ बढ़े हैं या कि नहीं बढ़े, ये देखना पड़े। जब जब भी हम इस प्रक्रिया को करें, सुबह शाम बैठ करके और वाणी स्थिर कर ली, चुप बैठ गए, हाथ पे हाथ रख कर के भी बैठ गए, लेकिन हम अपने मन में देखें कि मेरा मन जितनी जल्दी और क्रोध कर लेता है, क्या उतना अधिक उतनी जल्दी प्राणी मात्र के प्रति मेरे मन में सद्भाव और प्रेम आता है या नहीं आता। जितनी जल्दी मैं ईर्ष्या कर लेता हूं उतना दूसरे के गुणों की प्रशंसा करने का विनय भाव आता है कि नहीं आता। जितना मैं दूसरे के साथ चालाकी और चतुराई करने की आदत वाला हो गया हूं उतना मैं दूसरे के साथ सरल होकर के व्यवहार करता हूं कि नहीं। और जितना चीजों को देख करके मेरे मन में उनके ग्रहण करने का लालच उत्पन्न हो जाता है, उससे कहीं ज्यादा मेरे भीतर संतोष पूर्वक अपना जीवन जीने की आदत बनी है कि नहीं बनी, ये अपनी आदत देखनी पड़ेगी। सामायिक करने वाले बहुत लोग सामायिक करते हैं, लेकिन सामायिक करते हुए भी हमारी इन आदतों में परिवर्तन नहीं आवे तो हमें अपनी सामायिक को और दुरुस्त करना चाहिए और उसे परफेक्ट बनाना चाहिए। हम पहले सामायिक की प्रक्रिया शुरू करें, अर्थात समता भाव की प्रक्रिया शुरू करें, तो देखें कि इस प्रक्रिया से हमारे आदत में परिवर्तन हुआ कि नहीं। एक उदाहरण बच्चों को पढ़ाया जाता और अपन सब उसको समझते भी हैं कि वो कोई संत जी थे, साधु बाबा जी, तो वो नदी में स्नान कर रहे थे और नदी में स्नान करके जैसे ही बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि अरे ये पानी में बहा, वो बहा, बिच्छू था ये, वो पानी में बह रहा था। तो उन्होंने फौरन उसको ऐसे हाथ से उठा करके और किनारे पे रख, जैसे उसको किनारे पे रखना चाहा उसने बाबा जी के हाथ में डंक मार दी, बाबा जी का हाथ हिल गया, वो फिर से गिर गया। फिर से बाबा जी ने कोशिश करी, फिर जैसे ही किनारे पर रखने को होते फिर डंक मार देता तो फिर हाथ हिल जाता है ना, ऐसा पढ़ा तुमने। अब एक व्यक्ति देख रहा था तो उसको हंसी आ गई, किस बात पर? बाबा जी की गैर बुद्धिमानी पर, है ना, ऐसा ही लगता अपने को, लगे गई ऐसा कि कितने बुद्धू हैं बाबा जी, हर दूसरे की मदद करने वाला, हर कषाय को मंद करने वाला आज के समय में बुद्धू जान पड़ेगा। कि देखो तो संसार से कबू को कछु मिलो है, जो तुम सबको करत फिर रहे, अपनों छोड़ के दूसरे के काम में लगे, ऐसा कह देंगे अपन बहुत जल्दी। ऐसे ही उसने भी कह दिया कि बाबा जी उसकी आदत है डंक मारने की, आप व्यर्थ में उसके साथ परोपकार कर रहे हैं, वो अपनी आदत छोड़ेगा नहीं, आप ध्यान रखिएगा, इसलिए छोड़ दीजिए उसको, बहने दीजिएगा। तो बाबा जी ने क्या जवाब दिया? भैया अगर वो अपनी काटने की आदत नहीं छोड़ता तो मैं भी अपनी परोपकार और बचाने की आदत कैसे छोड़ सकता। लेकिन अपन तो बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, अपने स्वभाव से जल्दी विचलित हो जाते हैं अपन, जबकि हम चाहें तो जीवन भर क्षमा भाव धारण कर सकते हैं, प्रेम भाव धारण कर सकते हैं। क्रोध तो हम घंटे भर करेंगे ज्यादा से ज्यादा, 48 मिनट की उसकी मर्यादा है क्रोध की, ज्यादा से ज्यादा कोई को गुस्सा आएगी तो 48 मिनट के पहले पहले शांत हो ही जाए, होनी पड़ेगी। इससे ज्यादा गुस्सा कर नहीं सकते, वो भी 48 मिनट की जो उसकी ड्यूरेशन है वो भी किसके लिए, जिसका वज्र वृषभ नाराज सहनन होगा उसके लिए, उतना ताकतवर चाहिए गुस्सा करने की लगातार। 10-15 मिनट में प्राण बिल्कुल बेहल हो जाएंगे आपके, आप ज्यादा देर तक गुस्सा करेंगे। क्रोध हमारा स्वभाव नहीं, हम ज्यादा देर तक उसमें नहीं रह सकते, लेकिन इसके बावजूद भी जब हम उसकी तीव्रता थोड़ी सी आती है और हम उसके साथ में उसकी तीव्रता को और अधिक हवा देते हैं और बढ़ा देते हैं, उसी क्षण यदि हम याद आ जाए हमें कि सुबह शाम बैठ करके मैंने किस बात की साधना की है, मैं इतने जल्दी एक्साइट हो गया, मैं इतनी सी बात पर मेरा मन उद्वेलित हो गया, अशांत हो गया, नहीं, इस तरह हम चाहें तो आसानी से अपनी अच्छाइयों की आदत को लगातार मजबूत कर सकते हैं और बुराइयों की आदत को बदल सकते हैं। सामायिक ये बहुत बड़ा काम करती है। दूसरी चीज, सामायिक में हमें आत्मदर्शन की सीख मिलती है, हम अपने आप को देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि शांतिपूर्वक बैठो और अपने जीवन का एनालिसिस करो तो मालूम पड़ता है कि हम कैसे हैं। अभी तो हम अगर देखें तो हमें किस बात की ज्यादा आदत है, हमें आदत है कि हम दूसरों के बारे में खोजबीन करें, दूसरों के बारे में ध्यान रखें कि कौन क्या कर रहा है, हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं, इस बारे में ज्यादा वक्त ही नहीं हमारे पास में अपने बाबत सोचने का। तो आचार्य भगवंतों ने कितनी बढ़िया प्रक्रिया रखी कि सुबह शाम थोड़ा सा तो खाली बैठो और बैठ करके विचार करो अपने जीवन के बारे में कि आज दिन भर में मुझे क्या करना था वो मैंने किया कि नहीं, और मुझे क्या क्या नहीं करना था वो सब मैंने कितना अधिक किया। ये विचार अगर करेंगे तो दूसरे की तरफ दृष्टि नहीं जाएगी, और दूसरे की तरफ जब दृष्टि जाती है तभी तो हमारे अंदर ये कषायें जागृत होती हैं। अपनी तरफ दृष्टि बनी रहे तो कषायें जागृत होने का कोई उपाय ही नहीं। देख लो अपन, कोई अगर हमारे मन का कोई काम ना करे और उस समय उसकी जगह हम अपने आप को खड़ा कर लें तो गुस्सा नहीं आएगी, वो दूसरा है इसलिए गुस्सा आएगी, और अगर वही काम मैं कर रहा होता तब फिर तब काहे गुस्सा का कोई काम ही नहीं। हम जब जब भी दूसरे की तरफ दृष्टि देते हैं तो हमारे अंदर हमारी समता नष्ट हो जाती है, राग द्वेष उत्पन्न होने लगते हैं। इसलिए साधक या तो पर को पर मान करके उसमें हर्ष विषाद नहीं करता, या कि सब यहां पर आत्माएं अपनी ही हैं ऐसा मान करके सबके प्रति सद्भाव रखता है, तब अपनी कषायों को मंद कर लेता। सद अगर देखें तो सामायिक इस तरह से दूसरे के प्रति और या तो सद्भाव रखने की प्रक्रिया है, हम सीखें कि दूसरा अगर दिखाई पड़े तो उसमें हम क्या देखें, वह पर है इसलिए उसको देखकर हर्ष विषाद नहीं करना, इस ट्रनिस्ट की कल्पना नहीं करना, लेकिन इतनी तो बड़ी बात है, ये तो मुनि जनों के बस की बात है, इस ट्रनिस्ट की कल्पना ना करें। अपन कितना कर लें, गृहस्थ जीवन में भी कर सकते हैं कि हम सिर्फ जितनी देर सामायिक में बैठे उतनी देर प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव रखने की आदत डालें, अपने आत्मा की तरफ देखें कि जैसा मेरा जीवन है मैं जीना पसंद करता हूं, ऐसे ही तो सब हैं, सबके भीतर सुख दुख है, सब अपने कल्याण की भावना भाते हैं जैसे मैं अपने कल्याण की भावना भाता हूं। ये दूसरा स्टेप है सामायिक, हमें आत्मदर्शन और पर के प्रति सद्भाव की साधना करने की प्रक्रिया सिखाती है। और तीसरे नंबर, साधना करने से, सामायिक की साधना करने से विशेष रूप से हमारी क्षमता बढ़ने लगती है। हमारी क्षमता किस प्रकार है, अभी तो हम सोचते हैं कि गुस्सा करना हमारी क्षमता का प्रतीक है, लेकिन अगर देखें तो क्षमा भाव करना ही हमारी क्षमता का प्रतीक है। इस तरह देखना पड़ेगा, हमने एक मिसकॉन्सेप्ट अपने भीतर डेवलप कर रखा है, हमने बहुत सारी भ्रांतियां अपने भीतर, हम सोचते हैं जितना हमारे पास बाहर धन पैसा होगा उतनी हम क्षमतावान कहलाएंगे। ये जो हमने क्षमता अपनी बढ़ाने के लिए बाहर की चीजों पर डिपेंड हो गए हैं, वैसा नहीं है। हमारे भीतर क्षमता बढ़ती है जब हमारा क्रोध घटता है, जब हमारा अहंकार घटता है। जिसका जितना कम क्रोध वो उतना ज्यादा क्षमतावान। क्रोध करना तो कमजोर आदमी का काम है। अपन पढ़ते हैं कि क्षमा वीरस्य भूषणम, जो बहुत सूरवीर होगा, बलवान होगा, वही क्षमा भाव धारण कर सकता है, बाकी गुस्सा करने वाला तो बहुत कमजोर माना जाएगा। लेकिन अपन सोचते हैं कि देखा, हमने अपना गुस्सा बता करके और सब एक तरफ लगा दिया सबको ठिकाने, और हम बलवान हो। बलवान नहीं, सबसे ज्यादा कमजोर व्यक्ति है। ठीक इसी तरह जो दूसरे, जो अहंकार करता है और अहंकार करके अपने को बहुत क्षमतावान मान लेता है, वो उसका भ्रम है। जो जितना विनयवान है वो उतना क्षमता अपनी बढ़ा रहा है। क्या ऐसा हम अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहेंगे? तो सामायिक हमारी इस क्षमता को बढ़ाती। जरा जरा सी बातों में विहल हो जाना, ये क्षमता का प्रतीक है या कि कमजोरी का? जो जितना फर्मेबल है, जो जितना स्थिर चित्त है, वो उतना क्षमतावान कहलाए। यही तो सामायिक हमें सिखाती है। रोज रोज थोड़ा थोड़ा हमारे भीतर ये सब क्षमताएं बढ़ना शुरू हो जाए। एक जगह पर और क्षमता की परीक्षा हो रही थी कि कौन बलवान है, और लड़ाई हो रही थी, लेकिन हुजूम लगा हुआ था और वहां पर लोग देख रहे थे, लेकिन चकित थे कि भाई ये क्या कर रहे हैं, ये लड़ तो ही नहीं रहे, लड़ने का नाटक भर कर रहे हैं। वो क्या करते थे, एक दूसरे को कोई जीप चढ़ाता था, कोई मुक्का दिखाता था, मारने दौड़ता था, लेकिन पास जाकर के रुक जाता था। अरे घंटे भर हो गया, लड़ना है तो ढंग से लड़ो, लेकिन ये क्या कर रहे हैं। तो उसमें खुजर खुजर होने लगी लोगों में कि भाई ये कौन सी चीज है, ये क्षमता की परीक्षा। ये ऐसा मुक्का लेके जाता है, वो और जोर से आता पास में, लेकिन मारता कोई किसी को नहीं, आंखें दिखाता है, पैर से माने जैसे अपना बल प्रदर्शित करने के लिए सब एक्शन तो ऐसे कर रहे थे वो। अब पूछा गया कि भाई ये कर क्या रहे हैं, बोले क्षमता की परीक्षा हो रही है। कैसे? निर्णायक खड़े हुए हैं। सबसे क्षमतावान वो माना जाएगा जिसे इस तरह गुस्सा दिलाए जाने पर देर से गुस्सा आएगा, वो हारा माना जाएगा जो जल्दी से गुस्सा कर लेगा। बताइए, एक दूसरे को वे इस तरह गुस्सा दिलाने की तो कोशिश कर रहे हैं कि मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन जो जितनी जल्दी एक्साइट हो जाएगा, जो जितनी जल्दी गुस्से में आ जाएगा, वो कमजोर माना जाएगा और प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा। जो जितना सहनशील होगा वो उतना क्षमता। बताइए, ये भी कोई प्रक्रिया है क्या? ऐसी ही हमारे धर्म में प्रक्रिया दी गई कि हम अपनी क्षमता किसको मानते हैं, हम अपने को बलवान किस बात में मानते हैं। बलवान तो हम तब कहलाएंगे जब हम कोई हमारे ऊपर और आक्रमण भी कर दे, तब भी हम प्रतिकार ना करें, उसे क्षमा ही। बुद्ध के जीवन की एक घटना आती है, वो आपको सुनाऊं, और आज अपन ने छोटी छोटी सी दो तीन बातें सीख ली। आदत बदलें, अपनी तरफ ज्यादा देखें दूसरों की अपेक्षा, है ना। दूसरों की तरफ देखेंगे तो सिवाय संकलेश के कुछ नहीं होने वाला। दूसरे को ये करना चाहिए, दूसरे को वो नहीं करना चाहिए, ये देखेंगे अपन। अपनी तरफ देखें कि हमें दिन भर में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो जल्दी सामायिक होगी और सामायिक का फल मिलेगा। हमारे अंदर राग द्वेष घटेंगे, आकुलता घटेगी। जितना संसार की तरफ देखेंगे उतनी आकुलता बढ़ेगी, ये आचार्य भगवंतों का कहना है। अपना कर्तव्य हम पूरा करें और फिर देखें अपने आत्मा की तरफ, देखें अपने कल्याण करने वाला तो अपने आत्मदर्शन करेगा। और तीसरी चीज, अपनी क्षमता बढ़ाएं। क्षमता बढ़ाने के लिए हम धीरे धीरे करके क्रोध को घटाएं, अहंकार को घटाएं, छल कपट को दूर करें, लोभ को कम करें। ये सब चीजें अगर कम हो गई तो हमारी क्षमता बढ़ती चली जाएगी। बुद्ध के जीवन का वो उदाहरण सुनाऊं और बस आज इतना ही रखूंगा। फिर अपन इसको और आगे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे करके प्रयोग करके देखना। ये बिल्कुल प्रयोग करने की चीज। आज दिन भर में मुझे कितनी बार लोगों ने गुस्सा दिलाने की कोशिश की, मैं हुआ ही नहीं गुस्सा, बस मजा आ गया, अपन जीत गए, इतने ही तो है। आज उन्होंने हमको कितना एक्साइट करने की कोशिश की, कह रहे तुम तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं है, देख लो। तो मैंने सोचा कि अब मैं भी अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए, तो मुझे अहंकार आ गया। नहीं नहीं, अब मैं अहंकार नहीं करूंगा, मैं फिर भी विनयवान ही बना रहूंगा। ये इस तरह हम अपने जीवन में प्रयोग करके, सैकड़ों अवसर आते हैं दिन भर में अहंकार करने के, गुस्सा करने के, छल कपट करने के, लालच करने के, कितने अवसर सुबह से शाम तक। लेकिन उसमें से एकाध तो जीत के देखो, तब तो कहलाएंगे कि हाँ वाकई में हमने प्रैक्टिकल शुरू कर दिया। थोड़ा होमवर्क करने की आदत डालो। हमने आपसे शुरू में भी कहा था कि हमारे साथ आप होमवर्क भी किया करें। यहां तो सुन लिया घंटे भर, आधे घंटे, फिर बाद में वहां जाके कुछ भी नहीं। बच्चे इससे अच्छे हैं, कम से कम स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ के आते हैं और खाना पीना खा के जल्दी से होमवर्क करने बैठ जाते हैं।
लेकिन अपन बड़े होकर के बिल्कुल होमवर्क नहीं करते, घर में जाकर के थोड़ा भी करना चाहिए कि कैसे हमने क्या क्या समझा और वो हम अपने जीवन में करके भी तो देखें। क्या हुआ, बुद्ध के जीवन की एक घटना आती है, गौतम बुद्ध के जीवन की, तो वो मुझे अच्छी लगती। उसमें एक गांव से वो गुजरे तो वहां के लोगों ने उनका बहुत सम्मान किया, बहुत उनको भेंट वगैरह दी, बहुत अच्छा सब सचवाड़ बड़े प्रसन्न हुए। और आगे पहुंचे तो दूसरे गांव में और लोगों ने उनको गालियां देना शुरू की। और एक व्यक्ति ने तो आधे घंटे हो गया अब शब्द ही कहता चला जाए, सारे शिष्य बिल्कुल अपने को जब्त किए हुए बैठे हैं कि जरा सा बुद्ध का इशारा हो और हम इसको पकड़ करके और दंडित करें। आ ही जाता सबके मन में इस तरह का भाव, लेकिन बुद्ध उनको सबको आंख से इशारा करें कि शांत तो बैठो, कह तो लेने दो उसको, और क्या क्या कहता है देखें कितनी देर कहता है। वो चुपचाप बड़े धैर्य के साथ मुस्कुराते हुए उसकी गालियां सुन रहे। अब वो गालियां कितनी देगा, वन साइड रिलेशन ज्यादा देर नहीं चलते, श्रद्धा वाले तो चल जाते हैं, अपन अपनी भगवान के चरणों में श्रद्धा अर्पित करते हैं, भगवान अपन से कुछ नहीं बोलते फिर भी अपन लगे रहते हैं, ये वन साइड रिलेशन है। लेकिन गुस्सा के मामले में ये ज्यादा देर नहीं चलता, एक व्यक्ति चुपचाप मुस्कुराता रहे दूसरा कितनी देर गुस्सा करेगा, आधे घंटे बहुत होता, आधे घंटे उसने आधे घंटे गालियां दी, जब उससे नहीं रहा गया तो उसने बुद्ध के ऊपर थूक दिया। अब तो बहुत बड़ी चीज हो गई, जैसे ही थूका तब भी वो मुस्कुराते हुए और उन्हें अपने दुपट्टे से पहुंच दिया और बात खत्म। अब देखना तकलीफ किसको होती है, जिसने चुपचाप सहन कर लिया उसको, या कि जिसने तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की उसको। अपन तो सोचते हैं कि जिसने तकलीफ पहुंचाई वो कितना सामर्थ्यवान है, देखो तो बुद्ध के सामने ऐसा साहस दुस्साहस की गालियां दे रहा है, बहुत बलिष्ठ कह रहा है ना, अपन तो यही सोचेंगे। लेकिन वे चुपचाप सहन कर रहे हैं वो ज्यादा बलवान है। अब ये गाली वाली देके थूक करके चला गया और बाकी शिष्यों ने कहा कि आपने ऐसा कैसे, इतना धैर्य कैसे धारण कर लिया। बोले कुछ नहीं, इसमें करना क्या था मुझे, मुझे ये बताओ पिछले वाले गांव के लोग अपन को फल फूल मेवा मिष्ठान देने आए थे ना, कितनी बढ़िया बढ़िया बातें कर रहे थे, ये भी सही है ना। हाँ सही, अपन ने वो सब मेवा मिष्ठान फल फूल वगैरह लिए थे क्या, नहीं लिए भगवान, अपन ने तो सब लौटा दिए उनके, तो जब अपन ने लौटा दिए तो उन्होंने क्या किया उसका, बोले वो ले गए अपने, अपन ने नहीं लिए। जब अच्छी अच्छी बातें कह रहे थे और मेवा मिष्ठान दिए तब अपन ने नहीं लिए, तो उनको ले जाना पड़े अपने। इसी तरह जब उनने बुरे शब्द कहे, अपशब्द कहे, गालियां दी, यहां तक थूक दिया, हमने लिए ही नहीं, तो बताओ क्या होगा, उनको ले जाना पड़ेगा, अपना वापस ले जाना। इसमें तो जल्दी समझ में आती है, लेकिन जब कोई गाली दे और अपन नहीं ले तो हाँ अपन ले ही नहीं, आपने गाली दी तो पहले ही कह दो अपन उससे कि देखो आप गाली दो चाहे अपनी गुस्सा बताओ, हम गुस्सा होएंगे ही नहीं, अब आप देख लो कितनी देर आपको करना, आप ही परेशान हो, हम तो कुछ नहीं परेशान हो। अगर ये हमारे मन में भाव आ जावे फिर देखिएगा क्या स्थिति बनती है, कुछ अलग ही स्थिति बनेगी जीवन की जिसकी अपन कल्पना नहीं कर सकते। यही वास्तव में सामायिक से सीखने की चीज है। अपन जाप भी करते हैं, भगवान की पूजा भी करते हैं, ये सब चीजें क्या शिक्षा देने वाली हैं, ये सब एकाग्रता वाली चीजें जितनी भी हैं, पूजा भी एकाग्रता वाली, जाप भी एकाग्रता वाली, सामायिक भी एकाग्रता वाली, जितनी एकाग्रता वाली चीजें अपन करते हैं वो हमें यही सिखाती हैं कि अपनी क्षमता बढ़ाएं, अपनी बुरी आदत बदलें, अपनी तरफ दृष्टि बढ़ाएं, अपने आप को देखें, आत्मदर्शन करें, आत्मचिंतन करें। इस तरह अगर हम इस प्रक्रिया को रोज रोज करते हैं तो जरूर हमारे जीवन में परिवर्तन आने की संभावना है। इसी आशा के साथ कि हम सब अच्छी बातों को सीखकर उनको जीवन में लाकर अपने जीवन को अच्छा बनाएं। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी, हे गुरुवर। नमो नमिता आदि सागर सुधी गुरु में देशी शुभात्म में निरत नित्य दो सुदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हे सयाने उजून हे सतत केवल ज्ञान पाने उजून हे सतत केवल ज्ञान पाने।
बोले भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज हम सभी लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं। जीवन तब अच्छा बनता है जब हमारी दृष्टि निर्मल होती है और हमें आत्मज्ञान होता है और ये समझ उत्पन्न होती है कि हमारा हित किस में है और अहित किस में है। दौलत राम जी ने लिखा, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए कही है। जब तक हमें ये नहीं मालूम होता कि किस चीज को करने में हमारे जीवन का अहित है और कौन सी चीज हमारे जीवन का उत्थान करने वाली है, तब तक हम जो अहितकारी है उसे छोड़ने का प्रयत्न नहीं करते और जो हितकारी है उसे ग्रहण करने का पुरुषार्थ नहीं करते। इसलिए दृष्टि की निर्मलता के साथ ये जान लेना बहुत जरूरी है कि मेरे जीवन के लिए क्या हितकारी है और क्या अहितकारी है, और इतना जानने के बाद फिर हमारा पुरुषार्थ शुरू होता है। इतना तो हमने जान लिया है, ये तो कोई भी जानता है किस चीज में मेरा भला है किस चीज में मेरा बुरा है, लेकिन संस्कार इतने प्रबल हैं कि जिस चीज में बुरा है वो चीज ज्यादा रुचिकर मालूम करती है और जिस चीज में भला है उस चीज से विमुखता है, और यही हमारे अपने संसार के बढ़ाने का कारण है। कोई और हमारा संसार बढ़ाता हो, कोई और हमें संसार में रोके रख रहा हो या हमारे उत्थान में बाधा बन रहा हो, तो कोई और नहीं है जो हमारे उत्थान में बाधा बनता हो या हमारे पतन में कारण बनता हो। हमारे अपने परिणाम हमारे उत्थान और पतन में कारण बनते हैं। ये बात अगर हमारे समझ में आ जाए तो कैसे समझ में आएगी, हमने उसकी प्रक्रिया शुरू की है कि सुबह शाम बैठ करके और हम इस बात का विचार करेंगे कि दिन भर में मैंने ऐसा क्या किया जिससे मेरा उत्थान हो सके और दिन भर में मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे पतन का कारण बन सकता है। बहुत सारी प्रथमान युग की घटनाएं अपन सुनते हैं, रोज सुनते हैं और अपन ने पढ़ी भी है। कितने वो उदाहरण है कि जिसमें अपने किए हुए पापों का फल महान पुण्यात्मा को भी भोगना पड़ा, लेकिन फिर भी हम सचेत नहीं हो पाते। पूर्ण उदय जिनके तिनके भी ना ही सदा सुख साता, जिनके सारी बातें बहुत श्रेष्ठ हैं पर अपना किया हुआ खोटा कर्म, अपने किए हुए खोटे भाव हमें किस क्षण अपना फल देंगे। देंगे अनिवार्य, लेकिन किस क्षण देंगे हम ये नहीं जानते और गाफिल हो जाते हैं ये सोच करके कि मेरा तो सब ठीक चल रहा है। किसी भी क्षण हमें वो कर्म का उदय और अपना फल दे सकता है। अगर ये चीज भी हमारे मन में निरंतर बनी रहे तो फिर हम ऐसा कुछ क्यों करेंगे जो कि हमारे अपने जीवन का पतन करने वाला होगा। बस एक ये समझ कि इस संसार में मेरे दुखों का कारण मेरे ही भीतर है, मेरे सुख का कारण भी मेरे ही भीतर है। मैं कहीं बाहर ना खोजूं, अपने भीतर अपने परिणामों को टटोलूं, उनको देखूं। किसी और के कहने से हमें भरोसा भी नहीं होता, सहसा कोई कहे कि इस संसार में दुख है, कहां सहसा विश्वास होता, क्योंकि हम तो भौतिक सुखों को ही सुख मान रहे हैं और वे हमारे पास बहुत हैं, तो हम कैसे स्वीकार कर लें कि यहां संसार में सुख नहीं है। लेकिन जब स्वयं हम अपने अनुभव से इस चीज को जान लेते हैं तब वो चीज हमारे आचरण में परिवर्तन करने में मदद करती है। तो विचारों को हम स्वयं अनुभव करके देखें
ताकि वे हमारे आचरण को परिवर्तित कर सकें। एक जोहरी का बेटा था और उसकी माँ थी, पिता तो जो हीरे जवाहरात का काम करते थे वे नहीं रहे। अब बेटे ने तो काम सीखा नहीं था, बहुत मुश्किल में गुजारा हो रहा था। माँ को एक दिन जाने क्या सूझा कि वैसे कैसे गृहस्थी चलेगी, पिता कुछ हीरे छोड़ के गए हैं, अब तो उनको निकालो और जाओ अपने पिता के मित्र के पास और उनके पास ये रख दो और कर्म